हमें चोरी का मोबाइल बेचने आता है, हमें पता होता है मोबाइल चोरी का है, हमने उससे खरीद लिया, तो आप हमें बता दें मोबाइल बेचना कैसा है।
मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मेरा एक सवाल है कि अगर जैसे कोई चोरी का मोबाइल बेचने आता है और हमें पता है कि ये चोरी का मोबाइल है और वो अपनी कानूनी कार्रवाई अपनी NIC की कॉपी भी दे हमें, तो आया ऐसा मोबाइल हमें लेना जायज है?
एक रिवायत है जिसका खुलासा यह है कि जो शख्स चोरी का माल खरीदता है तो वो उस चोरी में हिस्सादार होता है। और सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हो ने फतावा रजविया में यह इरशाद फरमाया जिसका खुलासा यह है कि चोरी का माल खरीदना यह हराम है। अगर कोई वाज़ेह करीना भी है, एक तो मालूम है कि ये चोरी का माल है और दूसरा कोई ऐसा करीना मौजूद है, यानी इस पता चल रहा है वहाँ पर कोई सी बात है कि ये चोरी की चीज़ हो सकती है, तो उस सूरत में जो है उसको ख़रीदना भी हराम है। उसकी मिसाल सैयदी आला हज़रत ने यह दी कि कोई शख्स बिल्कुल जाहिल अनपढ़ है, उसके मुरीसीन यानी बड़े जो हैं वो भी ऐसे नहीं थे कि जिनके पास कोई नायाब किताबें हो सके। अब ये ऐसी कोई किताब लेके कोई शख्स आया तो ये करीना है कि ये अपनी नहीं है, कहीं से उठा के ले आया है। तो ऐसी कोई सूरत हाल हो कि जिससे ये पता भी चलता हो कि चीज़ चोरी की हो सकती है तो फिर उसको ख़रीदना ये हराम फरमाया कि इसकी इजाज़त नहीं है। ख़रीदी है तो मालिक को वापस करना, मालिक नहीं तो उसके जो वरसा हैं उनको वापस करना लाजिम है, वरना फिर फुकरा पर ये जो फ़कीर होते हैं शरई उनके ऊपर ये बगैर सवाब की नियत के सदका करेगा।
करीने में ये भी शामिल है कि इसका बाप भी जाहिल था कि इसको विरसे में भी नहीं मिली होगी, यानी ऐसा कोई करीना हो कि ये किताब लाया, ये बुद्धू, इसको किताब का नाम नहीं पढ़ने आता, ना इसका बाप कोई मतलब है ये किताब पढ़ सकता था, और फिर ये किताब लाया कहाँ से, तो हो ना हो ये कहीं से उठा के लाया। अब अगर इसमें कोई, फिर ये अदालत ने बेशक इरशाद फरमाया, लेकिन अब कोई ऐसा सबूत मिलता है कि भाई इसको किसी ने गिफ्ट कर दी ये किताब इसलिए बेच रहा है, तो जायज हो जाएगा? जब कोई इससे बातचीत हो और ऐसी कोई सूरत बनती है कि ये तोहफे में इसको मिली है, जैसे हमारे रिसाले बटते हैं, किताबें बटती हैं, अब किसी जाहिल को ये किताब मिल गई फैजान सुन्नत तोहफे में, है ना, और इसको पढ़ना भी नहीं आता कि किताब पे लिखा क्या है, और ये बेचने के लिए चला गया, बेच दी, तो ये जायज हो जाएगा? जो मोबाइल की चोरियां करते हैं, चोरी के मोबाइल बेचते हैं, जो म्यूजिकल टून रखते हैं, गाने सुनते हैं, मोबाइल पर फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, बेपर्दा औरतों की तस्वीरें रखते हैं और देखते हैं, ब्लू फिल्में देखते हैं, नेट पर गंदी गंदी जो क्लिप्स गंदे गंदे देखते हैं, मनाजिर देखते हैं, बदनिगाहियां करते हैं, सब खबरदार हो जाएं, वरना जहन्नम अल्लाह के कहर व गजब का मजहर है, और उसमें जो कुछ है, जो हदीसों में मिसालें दी गई, कुरान करीम में बयान किया गया, ये सब मिसालें बयान की गई समझाने के लिए, वरना हकीकत यह है कि जो जहन्नम में जाएगा उसको पता चलेगा जहन्नम क्या है। ऐसी यानी कि इसको दुनिया में समझाया नहीं जा सकेगा सही मानों में कि इसकी तकलीफ कैसी होगी, इसकी मिसाल दी नहीं जा सकती। जैसे किसी को अभी जिंदा आग में डाल दिया जाए, ये अभी ये चीख भी नहीं निकलेगी, भुन जाएगा, मर जाएगा, जहन्नम में मौत भी नहीं आएगी, और जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जे, कहीं 70 दर्जे, इतनी गर्म है, 70 गुना गर्म जहन्नम की आग। ये भी मिसाल है समझाने के लिए, जहन्नम की गहराई इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है कि एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान तशरीफ फरमाते, एक धमाके की आवाज सुनी, तो वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70 साल पहले जहन्नम के किनारे पर में एक चट्टान गिराई गई थी, 70 साल पहले, वो अभी जहन्नम की तह में पहुंची है, तले में उसके, इतना गहरा, अरबों खरबों मील, ये भी मिसाल समझाने के लिए, 70 साल तक वो गिरती रही, जबकि बहारे शरीयत में लिखा है कि इंसानी सर, ये सर है ना हमारा हेड, इंसानी सर के बराबर शीशे का गोला अगर आसमान से जमीन की तरफ गिराया जाए ना, सुबह का गिराया जाए तो रात तक जमीन तक पहुंच जाए, हालांकि कितना ऊंचा है, 500 साल के बराबर रहा है इसकी, फिर भी वो सुबह से शाम में ये पहुंच जाए, एक दिन में पहुंच जाए जमीन तक, तो ये जहन्नम कितनी गहरी होगी, इसकी पैमाइश मुमकिन ही नहीं है हमारे लिए। जहन्नम ऐसे ऐसे आग के पहाड़ होंगे, स्वाऊद जिसको बोलते स्वाद से स्वाऊद, इन पर चढ़ाया जाएगा जहन्नमियों को, 70 وہ آگ کے ہوں گے پہاڑ, چڑھ نہیں سکتا آدمی, ان کو چڑھا جائے مجبور کیا جائے گا, وہ چڑھے, وہ جہنم کے پہاڑ پر چڑھیں گے. اے موبائل چوری کرنے والو, گن پوائنٹ پر موبائل چھیننے والو, تم بھی یاد رکھو. اے چوری کیے موبائل خرید کر بیچنے والو, تم بھی یاد رکھو کہ جہنم میں آگ کے پہاڑ ہیں, ان میں جہنمی کو چڑھایا جائے گا, مجبور کیا جائے گا, وہ چڑھے گا, 70 سال تک وہ چڑھتا رہے گا, جب جا کر اس کی چوٹی پر پہنچے گا آگ کے پہاڑ پر, پھر وہاں سے اس کو اتارا جائے گا. اب وہ لڑکتا گرتا پڑتا 70 سال تک وہ نیچے پہنچے گا تے میں, پھر چڑھایا جائے گا, خدا جانے کب تک یہ عذاب اتارے گا. تو جو بھی گناہ کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, جان بوجھ کر جماعت ترک کرتا ہے, بد دیانتی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, گالی نکالتا ہے, غیبت کرتا ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے, لوگوں پر ظلم کرتا ہے, دہشت گردیاں کرتا ہے, لوگوں کو دھمکیاں دے کر بھتہ وصول کرتا ہے, سب کے سب سنیں, خدا کی قسم جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے کہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا, کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. تو آج سے سب کے سب اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے نمازی بن جائے, سنت اپنا لے, گناہوں کو 3 طلاق دے دیں, گناہوں بھرے آلات گھروں سے نکال دیں, سب نکال دیں, گھر کو پاک کر کے آیت الکرسی لگا دیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا لگا دیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی فریم لگا دیں, مکہ مدینے کی فریمیں لگا دیں, یہ لگائیں, یہ لگانے کی یہ کیا گندی گندی تصویریں لگا کر رکھی ہیں آپ نے, یعنی تصور خدا کی قسم ہم نہیں کر سکتے, وہ تکلیف کیسی ہوگی. یا اللہ بے حساب بخش دے ہمیں, جہنم کا ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی ہمیں نہ ہو عذاب, محبوب کی شفاعت نصیب ہو جائے, بے حساب ہم کو بخش دے. پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, سب کے سب ناظرین ناظرین آج سے توبہ کر کے اٹھیں اور جنت کا راستہ لیں, جنت کی نعمتیں انشاءاللہ محبوب کے صدقے میں ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.